सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतेर हर 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में वैराग्य और ज्ञान के प्रकरण के अनंतर भक्ति का प्रकरण चल रहा है। भक्ति के भी विषय में बताया, एक स्थूल भक्ति है, दूसरी भक्ति सूक्ष्म भक्ति है। और भक्ति के विषय में ही एक संशय आया, उन संशयों का एक समाधान कर रहे हैं। पहले बताया कि जो सगुण संसार दिख रहा है वह वास्तव में निर्गुण ही है, इसको स्पष्ट नहीं बल्कि गूढ़तया रूप से छिपा करके उपनिषदों में, श्रुतियों में और पुराणों के द्वारा बताया गया है। पूर्व पक्षी के मन में संशय आया कि सगुण तो दृश्य शरीर वाला होता है, सगुण एक देश वाला होता है, वह निर्गुण निराकार परमात्मा कैसे हो सकता है? सगुण में राग द्वेष भी रहेगा और उस परमात्मा में राग द्वेष है ही नहीं, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो कहा, भाई देखो, इन आंखों से देखोगे ना तो तुम्हें ऐसा ही दिखाई देगा। परमात्मा के असली स्वरूप को जानने के लिए तुम्हें ज्ञान दृष्टि चाहिए, तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, इन आंखों से तू मेरे वास्तविक स्वरूप को देखने में समर्थ नहीं हो सकते। न तू माम शक्यसे द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग मैश्वर्यम्। दिव्य दृष्टि देता हूं। दिव्य दृष्टि माने क्या हुआ? ज्ञान दृष्टि देता हूं, ज्ञान दृष्टि के बल से तू मेरे वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। वास्तविक स्वरूप क्या है? यह सारा संसार ही मेरा अपना ही रूप है, मेरा अपना ऐश्वर्य है, इसको तू जान सकता है। इसके लिए कई उदाहरण दिया है। पहला एक सूर्य का उदाहरण दिया। सूर्य पृथ्वी को आच्छादित करके स्थित है, लेकिन फिर भी एक छोटे से कोने में दिखाई देता है। उसी प्रकार से वह ब्रह्म पूरे विश्व को आच्छादित करके स्थित है। पूरे विश्व नहीं, ब्रह्मांड को आच्छादित करके स्थित है, लेकिन वह ब्रह्म हमें एक शरीर में ही दिखाई देता है, अन्य शरीरों में दिखाई नहीं देता। हम लोग कहते ना, हम ब्रह्मास्मि, मैं क्या हूं? ब्रह्म हूं, लेकिन तुम सब शैतान हो, माया हो, क्या है? हम अपने में तो देख लेते हैं। दो समस्या है, कई लोग तो अपने में देख लेते हैं लेकिन दूसरे में दिखाई नहीं देता है। कई लोग क्या होते हैं, सब में देख लेंगे लेकिन अपने में नहीं देखते, ये दोनों समस्या है। कई लोग ब्रह्म कहां देखते हैं, अपने भीतर दिखते हैं कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, लेकिन अपने अलावा जितना जगत दिखता है उसमें उनको ब्रह्म दिखाई देता ही नहीं है। हाँ माया है, कल्पित है, ठीक है, लेकिन कल्पित का भी तो कोई ना कोई अधिष्ठान होगा कि नहीं होगा, उस अधिष्ठान पे हमारी दृष्टि जाती नहीं है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिसमें सब में ब्रह्म दिखेगा लेकिन अपने में नहीं दिखेगा, तो दोनों आधे बंदे हैं। जिसने अपने में देखा दुनिया में नहीं देखा वो भी क्या है, आधा, और जिसने दुनिया में देखा और अपने में नहीं देखा वो भी क्या है, आधा। तो पूरा कौन होगा, जिसने अपने में भी देख लेवे और दुनिया में भी देख लेवे वह व्यक्ति क्या होगा, पूरा होगा। तो हम लोग आधा नहीं बनने आए हैं, क्या बनना है, पूरा बनना है। तो सूर्य ईशावास्य मिदम सर्वम, जैसे जल से, जल के भीतर रहने वाले जितने जीव हैं वह सब के सब क्या है, व्याप्त हैं, उनके बिना उनकी सत्ता सोच ही नहीं सकते। उसी प्रकार से यह सारा विश्व उस चैतन्य में ओतः प्रोत है, व्याप्त है। उस चैतन्य के बिना इस विश्व की सत्ता की कल्पना हो ही नहीं सकती है। फिर भी दिखाई देता है कहां, एक छोटा सा, छोटा सा माने एक शरीर में ही दिखाई दे रहा है। साकार होता हुआ भी वह वास्तव में व्यापक है, सबकी आत्मा रूप से स्थित है और सत्चित आनंद स्वरूप है। इसको अन्य रूप में कैसे देखें, तो बताए एक ही भगवान ने एक साथ है, एक साथ है, हर गोपिकाओं के साथ रमण किए हैं। तो हर गोपिकाओं के साथ रमण करने वाले भगवान क्या हैं, एक ही, एक अलग अलग हैं। और सबके साथ हैं कि नहीं है, तो गोपिका माने, हाँ गोपिका माने जहां इंद्रियों का पालन पोषण होता है। तो कहां इंद्रियों का पालन पोषण होता है, शरीर में। तो हर शरीर के साथ रमण करने वाले भगवान एक ही साथ हैं कि अलग अलग हैं। अरे आपके साथ भी बैठा सुन रहा है और मेरे साथ बैठा हुआ सुना रहा है, बोल रहा है, किसी के साथ बैठा हुआ कोई और काम करा रहा है, सबके नाचने की कला एक है कि अलग अलग है, बताओ। अरे भाई कभी शादी में हम नाचे हो, नहीं नाचे आप लोग, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे ऐसे करता है, कोई कमर मटकाता है, कोई यूं यूं करता है, कोई यूं यूं करता है, सबके नाचने की कला क्या है, लेकिन शक्ति सब में। तो उस जो शक्ति स्वरूपा है वही कौन है, परमात्मा ही है। तो ऐसा नहीं कि परमात्मा ने द्वापर युग में ही उन्हीं गोपिकाओं के साथ नाचे थे, आज भी नित्य वही नाच रहा है। किसके साथ, हम सबके साथ एक साथ ही नाच रहा है। कहां नाचता है, एक साथ ही, कभी पत्नी के रूप में वही प्रकट हो जाता है, कभी किसके रूप में, पुत्र के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी अतिथि के रूप में, लेकिन जिसके भी रूप हैं सारे रूप किसके हैं, उस परमात्मा के। दृष्टि बनाओ तो देखो आपको आनंद आ जाएगा। आपको क्या है? इसी भाव से हमारे यहां कहा गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुस च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या, यहां तक द्रविणम जग के रूप में, द्रविण माने धन के रूप में भी त्वमेव, हे प्रभु तुम ही हो। हम इतने क्या रूप बताएं, तुम ही सब रूपों में हो, तुम ही कितने रूपों में हो, सब रूपों में हो। ये भावना तो करो, इन आप लोग भावना करते हो ना, मैं पत्नी को खिला रहा हूं, मैं पुत्र को खिला रहा हूं, मैं भाई को खिला रहा हूं, इसने मुझे धोखा दे दिया। अरे इसी भावना ही मत रखो, ये भावना रखो मैं किसको खिला रहा हूं, अपने आप को या परमेश्वर को, सबके रूप में हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और एक और मैं बताऊं, जो भी कर्म होता है दुनिया में, कोई भी कर्म करता है सब ईश्वर को समर्पित हो रहा है, सब ईश्वर के लिए ही कर रहा है, कोई भी कर्म कहीं से भी करे, पत्नी के लिए कर रहा है तो भी किसको समर्पित हो रहा है? एक उदाहरण के तौर पर आप समझो तो समझ में आ जाएगा। आंखें रूप देखती हैं, क्या करती हैं? आंखें क्या देखती हैं? रूप, आनंद, फल किसको मिलता है? आंख को या मुझे? आनंद किसको मिलता है? मन को या मुझे? सीधी सी भाषा बोल दो ना, ज्यादा वेदांत की भाषा ना बोलो, सीधी कह दो, क्या मुझे मिलता है? ठीक ना, कान शब्द सुनता है, सुख किसको मिलता है? मुझे। जिह्वा सुंदर रस लेती है, फल किसको मिलता है? मुझे। हम कोमल बिस्तर पर सोते हैं एसी चलाकर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सुख किसको मिल रहा है? चमड़े को या मुझे? तो जितने भी काम हम कर रहे हैं इंद्रियों के द्वारा, वो सारे कर्म समर्पित तो हो रहे हैं किसको? मुझे। किसमें? व्यष्टि में। कहां पे? तो हम अपनी इन इंद्रियों से क्या कोई ऐसा काम करना चाहेंगे कि मुझे दुख होवे? बोलो भाई, ऐसा जहर खाना चाहोगे क्या कि मुझे दुख होवे? बल्कि जिसको जान जाओगे जहर है उसको क्या करोगे? तो ऐसा काम नहीं करोगे मेरे को दुख होवे, क्योंकि सारे कर्म किसको समर्पित हो रहे हैं? मुझको। जैसे व्यष्टि में है, ऐसे समष्टि में भी जिसके द्वारा जो भी कर्म किए जा रहे हैं वह सारे कर्म एन केन प्रकारेण किसको समर्पित हो रहे हैं? उस परमात्मा को समर्पित हो रहे हैं। इसलिए जीवन में कभी ऐसा कोई काम न होवे कि उसको दुख होवे। किसको? नहीं आया? फिर से उदाहरण है। अच्छा, आप लोग टैक्स पेयर हो या नहीं हो? टैक्स कोई भी कहीं से भी कैसे भी दे रहा हो, वो कहां जाता है? सरकार के पास जाएगा। चाहे सर्विस टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे हम तो क्या बोलते हैं, दुनिया का कोई भी टैक्स हो, हमें सब टैक्स देते नहीं देते बताओ? कहो मैं नहीं देता हूं, बस ये डायरेक्ट जमा कर देते हैं। मसूदन जी महाराज डायरेक्ट जाके जमा कराते हैं इनकम टैक्स, और हम लोग डायरेक्ट नहीं जमा करके क्या करते हैं? परोक्ष रूप से। क्योंकि एक साबुन भी खरीदते हो तो उसमें भले हम रसीद नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसमें भी सेल टैक्स है। एक टिकट खरीदते हैं मनोरंजन वाला, फिल्म का जा करके, उसमें भी मनोरंजन टैक्स लगा हुआ है। तो बताओ, एक गाड़ी पेट्रोल भी खरीद रहे हैं तो उसमें भी टैक्स है। तो बताओ, सब टैक्स दे रहा नहीं दे रहा है, और सारा पैसा खींच तान के कहां जा रहा है? चाहे रेलवे के माध्यम से आ रहा है, चाहे बस के माध्यम से आ रहा हो, चाहे मनोरंजन के माध्यम से आ रहा है, सब पैसा आपका इकट्ठा करके कहां जा रहा है? सरकार के पास जा रहा है, नहीं जा रहा है बताओ? तो इसी प्रकार से जितना भी दुनिया में कर्म होता है वह सारा का सारा कर्म किसके पास जा रहा है? लेकिन ये भावना नहीं बन पाती, ध्यान देना। हम कहते हैं कर्म हम पत्नी के लिए कर रहे हैं, कर्म हम पुत्र के लिए कर रहे हैं, तो पुत्र और पत्नी के लिए जो कर्म करते हैं ना, पुत्र अथवा पत्नी से वासना हो जाती है, मैं तुम्हारे लिए कर्म करना, तू मेरे लिए एक कर। यदि वही कर्म उस परमेश्वर को समर्पित कर दिया, समष्टि खाते में डाल दिया, ध्यान देना है, आपने कितने पैसा इकट्ठा किए होंगे, सारा पैसा कहां पहुंचा? सरकार के पास है। शराब पीने वाला भी टैक्स दिया था नहीं दिया था, वो पैसा कहां पहुंचा? सरकार के पास। अब उस पैसे का सरकार कहां यूज करेंगे, इसके जिम्मेदार आप बनोगे क्या? हो सकता शराब वाला पैसा शिक्षा में खर्च कर देवे, स्वास्थ्य में खर्च कर देवे, रोग में खर्च कर देवे, यहां का माल वहां का माल करता रहता नहीं करता है। तो आप अपने सारे कर्मों को समर्पित कर दिया किसको? उस ईश्वर को। अब ईश्वर उन कर्मों के फल को कहां ट्रांसफॉर्मेशन किस रूप में करेगा उसके ऊपर डाल देना, फिर अपनी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, फिर हमें यही फल मिले, ऐसे फल की इच्छा अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? सब रूपों में ईश्वर ही है, इस भावना से कर्म करो तो उन कर्म के फल की वासना भी नहीं होगी, और वासना न होने से जन्म मृत्यु का प्रवाह भी अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वासना ही आपको जन्म मृत्यु के प्रवाह में डालती है। वासना ही आपको जन्म मृत्यु के प्रवाह में डालती है। चलो जो भी है, तो विदेह जनक और श्रुत देव दो ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों के यहां एक ही साथ भगवान उपस्थित होकर के दोनों का आतिथ्य सत्कार को ग्रहण किया है। ऐसे भगवान हम सब के जीवन में एक ही साथ आकर के, कहीं वही बताए मेहमान के रूप में, कहीं पत्नी के रूप में, कहीं पुत्र के रूप में, कहीं और दीन दुखियों के रूप में आकर के हम सबको सेवा का अवसर दे ही रहे हैं। तो सब रूपों में कौन है, आगे चले, ये भी बता दिया था कल। दुर्योधन ने सबको किस रूप में देखा था, कृष्ण रूप में। दुर्योधन ने अपनी सेना को किसके रूप में देखा, लेकिन अपने को नहीं देखा, बस वहां आधा रह गया। इसलिए व्यापक आत्मा भगवान हरि ईश्वर कृष्ण, इसलिए भगवान श्री कृष्ण व्यापक हैं, हरि हैं, ईश्वर हैं, आत्मा हैं, ये भी आज बता दिया था। दूसरा था भगवान में राग द्वेष है। भगवान में क्या है, राग और द्वेष है। सही बताऊं, भगवान में न राग है न भगवान में क्या है, द्वेष है। भगवान तो शांत और सम है। भगवान क्या है, शांत और सम है। सम माने एक तुल्य है। एक भगवान एक ऐसे वृक्ष की तरह है, कल्प वृक्ष की तरह है, कि उस कल्प वृक्ष में कोई खट्टा फल लेता है, कोई पका हुआ फल लेता है, कोई उसके पत्ते लेकर के संतुष्ट हो जाता है, कोई उसकी लकड़ी काटता है, लेकिन वृक्ष का किसी से न राग है न किसी से द्वेष है, बल्कि वृक्ष के नीचे कोई छाया लेकर के ही संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसे वह परमात्मा ऐसे कल्प वृक्ष की तरह है, जिनमें राग द्वेष की कल्पना होना असंभव है। कैसे आप कर सकते हो, तो एक उदाहरण दिया, जब भृगु ने भगवान को क्या मारा, लात मारा, तो बताओ भृगु क्या भगवान के द्वेष के पात्र बन गए क्या? भगवान उससे द्वेष नहीं करते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, अतीव कोमलव तात चरणव ते महामुनि। हे महामुनि, आपके पांव तो बड़े ही क्या हैं, कामल कोमल हैं, सॉफ्ट हैं, कमल की तरह हैं, और मेरा सीना वज्र के समान कठोर है। इतिक्त्वा, आपको चोट तो नहीं लगी, ऐसा कह करके ब्राह्मण के चरणों को मर्दयन स्वेन पाणिना अपने ही हाथों से क्या करने लगे, मालिश करना शुरू कर दिए। बताओ भगवान को द्वेष होता उनके प्रति, तो भगवान उनके चरणों को क्या हाथ से सहलाते क्या? तो भगवान का किसी के प्रति भी कोई द्वेष, इतना ही नहीं, देखो भगवान के पास आया अर्जुन भी, भगवान के पास आए दुर्योधन भी, भगवान ने किसी को ना किया क्या, मुझे बता दो। यदि भगवान को दुर्योधन के प्रति द्वेष बुद्धि होती तो भगवान मना करते, तो उनको कौन रोकने वाला था, मना कर देते, नहीं जाओ तुम अपना काम करो भाई, तेरी अपनी अकड़ है ना, तो अपने हिसाब से कर ले, मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता। बल्कि भगवान दुर्योधन को पहला प्रिफर देते हैं, क्या देते हैं, दुर्योधन को पहला प्रिफरेंस करते हैं। अच्छा दुर्योधन तू ही मांग ले, तुम्हें क्या चाहिए, हमारे पास दो च्वाइस है, एक तरफ मैं अकेला रहूंगा लेकिन कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी चतुरंगी सेना रहेगी और अस्त्र शस्त्रों के साथ सुसज्जित रहेगी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने क्या कहा, महाराज जी आपको लेकर क्या मैं करूंगा, हमें तो आपकी सेना ही चाहिए। तो सेना ले लिया, तो बताओ दुर्योधन की उन्होंने इच्छा पूरी किया कि नहीं किया। अरे सीधी सी बात आप सोचो, एक माँ है, एक माँ के दो बेटे हैं, एक बेटा पढ़ने में थोड़ा अच्छा है, योग्य है, और दूसरा बेटा थोड़ा नालायक है, मां बताओ किसी भी बच्चे से द्वेष करती है क्या? भले नालायक बच्चा है लेकिन मां का उस बच्चे से जरा सा भी द्वेष होता ही नहीं, फिर भी कहते मां उस बच्चे को डांटती रहती है, जब देखो झिझकारती, क्या बोलते हैं, झिझकारना, झिझकारती रहती है उसको, तो बड़े प्यार से रखती उसको, तो कहते हो झिझकार में भी प्यार छिपा हुआ है, माँ के डांट में भी क्या छिपा है, प्यार ही छिपा है, ध्यान देना। बल्कि जो बच्चा नालायक होता है ना, पहले उसकी च्वाइस पूछी जाती है, और जो बच्चा शांत है, अरे ये तो बेचारा संतोषी है, इसको जो दे देंगे चुपचाप खा लेगा, इसके लिए ज्यादा हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, वही नखरा मारता, उसी के लिए पूछना पड़ता है बेटा क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या तेरे लिए ले आदे में, ये तो गऊ है। तो ज्यादा ध्यान किसको दे रहे हैं, खराब वाले को। तो भगवान ने भी ज्यादा ध्यान किसको दिया, दुर्योधन को ज्यादा ध्यान दिया कि बता तेरे को क्या चाहिए, अर्जुन को तो मैं बाद में समझा लूंगा, अपने ढंग से समझा लूंगा, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने मांग लिया, क्या मांगा, महाराज इससे नहीं हमें चाहिए। तो कहा अच्छा ले जा भाई। तो भगवान का द्वेष से क्या कोई पात्र है क्या, बल्कि भगवान यदि किसी को डांटते हुए दिखते भी है ना, तो डांटने में भी भगवान का क्या छिपा हुआ है, प्यार ही छिपा हुआ है। इसी के लिए कहे भक्ता नाम असुराणाम अन्य शाम व फलम सदृशम। भगवान तो चाहे भक्त होवे चाहे असुर होवे, चाहे कोई भी इंसान अथवा कोई भी पशु पक्षी होवे, सबको एक समान ही फल दिया कहते हैं। अब भगवान का फल एक समान क्या है, मुक्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति कराना। भगवान किसी को भोग नहीं देना चाहते, अब भोग देकर के परमात्मा तृप्त भी नहीं होते हैं, लेकिन भक्ति भगवान से भोग ही मांग लेता है तो भगवान को भी क्या होता है, दुखी होता है। कर्दम ऋषि ने तपस्या किया, भगवान खुश हो गए, तो कहा महाराज मनोनुकूल पत्नी मिल जाए, है नहीं। कहते हैं भगवान की आंखों से क्या गिर पड़े, आंसू टपक पड़े, बिंदु सरोवर बन गया, मैं तो मुक्ति देने आया हूं, लेकिन फिर भी ये बेचारा क्या मांग रहा है, संसार, मनोनुकूल पत्नी मिल जाए। ऐसी मनोनुकूल पत्नी मिल जाए तो आपत्ति है नहीं, ऐसा उसके मन में धारणा थी, किसके मन में, कर्दम ऋषि के। लेकिन फिर भगवान ने उसकी तपस्या को पूरा किया कि नहीं किया, किसके रूप में, कपिल के रूप में अवतार लेकर के कर्दम का कल्याण किया कि नहीं किया। तो हां भाई अब योग्यता नहीं है तो क्या करे, जिस बच्चे के अंदर योग्यता होती है वह बच्चा एक ही जन्म में ले लेता है, और जिस बच्चे के भीतर योग्यता नहीं होती है, मां उसको ट्यूशन पढ़ाती है, एक क्लास में दो साल रखती है, लेकिन भगवान की कृपा सब जीवों पे है, और भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या होती है, उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति करवा देना, संसार की प्राप्ति नहीं करवाना है। संसार की प्राप्ति में भगवान क्या करेगा, वो भगवान की माया ही पर्याप्त है। संसार की प्राप्ति के लिए कौन पर्याप्त है, भगवान की माया ही सब कुछ कर देती है। भगवान की प्राप्ति हो, भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, भगवान के स्वरूप को ही जान लेना, भगवान के स्वरूप वही तो मेरा स्वरूप है, यह जान लेना, यह भगवान सबको चाहते हैं। अगला श्लोक, तस्मात न कोपि शत्रु नो मित्रम न अपि उदासीन नृहरि सन्मार्गस्थ सफल साक्षी इव यदुनाथ। इस कारण से निश्चय हुआ कि कोपी शत्रु न, भगवान का कोई भी दुश्मन है ही नहीं। तो कोई मित्र तो होगा, कोई पराया नहीं है, तो भगवान का कोई अपना तो होगा। कहते न मित्र है भगवान, क्या है, भगवान का कोई न अपना है न भगवान का कोई, अरे स्वाभाविक है। देखो अपना पराया द्वैत में होता है, जहां एक ही सत्ता है तो एक ही सत्ता में हम किसको कहें अपना और किसको कहें पराया। तो न अति उदासीन, भगवान न्यूट्रल रहते होंगे, तो कहते भगवान उदासीन भी नहीं है, मुंह लटकाए भी नहीं रहते हैं, वो तो आनंद रूप है। नृहरि मनुष्य रूपधारी जो मनुष्य हैं, परमात्मा हैं, वह कैसे हैं, सन्मार्गस्थ, अच्छे मार्ग पर, सुंदर मार्ग पर लगे हुए फल वाले एक वृक्ष की तरह है। रास्ते पर एक क्या हुए, सुंदर फल वाला वृक्ष हुए। अब बताओ वह वृक्ष क्या कभी किसी से अपेक्षा करता है क्या, कि तुम आकर के भाई मेरे छाया में बैठ जाओ थोड़ी देर, मेरा एक फल तोड़ लो अथवा मेरी एक डाल काट डालो, कभी वह वृक्ष अपेक्षा करता है क्या? वह तो बिना भेदभाव के सबको छाया फल और फूलों की सुगंधि देता है। लेकिन आदमी की अलग अलग पहचान है, कोई व्यक्ति उससे छाया ही लेता है, कोई फल फूल की तरफ देखता ही नहीं है, कोई फल लेता है और फल में भी कोई किसी को खट्टे पसंद है। आम केरी आती ना, केरी मैंगो, तो मैंगो में कई तो कच्चे ही आम खाते हैं, महाराज चटनी बनानी है तोड़ लेते हैं, और कई तो क्या कहते हैं इंतजार करते हैं कौन सा आम खाना है, पक्का रस वाला। तो कोई पक्का मीठा फल लेता है, कोई कच्चा लेता है, जो जैसा चाहता है वह वृक्ष उसको उसी रूप में, कोई तो उस वृक्ष के पास जाकर के सूखी सूखी लकड़ियां तोड़ के लाते हैं, मैंने देखा है। एक काम वाली जो उधर होती ना, जो चूल्हे में रोटी बनाती है, वो बस इधर झांकती रहती है पेड़ों में, अब कौन सी डाल कहां सूखी हुई है वो फंसा करके उसको तोड़ करके, उनको तो सूखी डाल से ही मतलब है और किसी से कोई मतलब है ही नहीं। तो हर व्यक्ति जो जैसा चाहता है उस परमात्मा से वह व्यक्ति वही प्राप्त करता है, इसलिए भगवान का किसी से राग द्वेष है ही नहीं। कल भी बताए थे कि चलो जो दुश्मनी का भाव रखे भगवान उससे भी प्यार करते हैं, इतना सोच लेना। कैसे? लोह शलाका निवहई स्पर्शास्मनि विद्यमाने पी स्वरंगत्वम एति लौहम द्वेषाद अपि विद्वषाम तथा प्राप्ति ही। कहते स्पर्श अस्मनि, एक है पारस मंगली पत्थर, हमने देखा तो नहीं है केवल सुना ही सुना है, अब असली में होता है या कल्पना है तो भगवान जाने, लेकिन एक पत्थर है कौन सा, पारसमणि पत्थर है। उस पारसमणि पत्थर में लोह शलाका निवही, लोहे की शलाका के द्वारा, लोहे की कील के द्वारा क्या किया जाए, भिद्यमाने अपि छेद करो तोड़ो। तो बताओ तोड़ने पर वह लोहे की कील उस पत्थर को कष्ट दे रही नहीं दे रही है, किसी को ठोंको तो उसमें कष्ट ही नहीं कष्ट है, इन कष्ट सहने पर भी वह पत्थर उस लोहे की शलाका को क्या बना देती है, सोना बना देती है, स्वर्णताम एति स्वर्णता को प्राप्त करती है। इसी प्रकार से विद्वेष करने वाले शत्रुओं को भी भगवान कभी द्वेष नहीं करते हैं, बल्कि विद्वेष करने वाले शत्रुओं को भी परमात्मा अपने स्वरूप की प्राप्ति करवा देते हैं। अब बताओ सबसे बड़ा विद्वेष करने वाला कौन था, शिशुपाल, जो गिन गिन के गाली देता था, मतलब कहते जब से उसके दूध के दांत आए नहीं थे, मतलब थोड़ी सी समझ आई थी, समझ आने के बाद पानी पी पी करके गाली देता था, किसको, भगवान को। लेकिन कहते हैं जिस समय भगवान उसको मारे हैं ना, तो उसके शरीर से एक तेज निकला, अब कहां समा गया, परमात्मा में। तेज माने क्या हुआ, उस शिशुपाल का जीव भाव समाप्त होकर के कहां हो गया, ब्रह्म भाव में तादात्म को प्राप्त कर लिया। इसको देखकर के आश्चर्य भी होता है, किसको, ये सब सभा, ये सब घटना कहां हुई थी, युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में, युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में घटना हुई थी, यही हुई थी ना। तो उसमें जब देखे शिशुपाल के शरीर से तेज निकलकर कहां समा गया, परमात्मा में समा गया, वही जीव भाव किसमें मिल गया, परमात्मा भाव में हो गया, तो इसको देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, युधिष्ठिर महाराज को, भागवत के सातवें स्कंध में। तो युधिष्ठिर महाराज के मन में संशय होता है कि महाराज जन्म का पापी आदमी जो पैदा होते ही आपको गाली दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं आंखों से देख रहा हूं कि जिस गति को कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं, जन्म जन्म तक बड़े बड़े यति वृंद तपस्या करते हैं लेकिन परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति होती नहीं है, यह पापी आपके स्वरूप को कैसे प्राप्त कर गया। भगवान कहते हैं भाई देखो, मेरा चिंतन कोई भी व्यक्ति किस भाव से करता है, हमें भाव से नहीं लेना देना है, चिंतन तो करता है। गोपिकाओं ने काम से किया, गोपिकाओं ने कैसे कहा, काम से किया। और किसने, किसने, कंस भय से किए, कंस ने चिंतन कहां किया, भय से। शिशुपाल ने द्वेष से चिंतन किया, दंतवक्त्र स्पर्धा से चिंतन किया, कंपटीटर, मैं कम हूं क्या उससे, कौन है दंतवक्त्र। और कोई प्रेम से चिंतन कर रहा है, लेकिन बताओ सबको उसी स्वरूप की प्राप्ति होती नहीं होती, बताओ। अरे मैं और क्या बताऊं, खाना खाओ, लेट खाओ, बैठ के खाओ, चल के खाओ, लेकिन तृप्ति एक होती नहीं होती है। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं उस भाव को मैं नहीं देखता हूं, मैं देखता हूं किसी भी रूप में मेरा चिंतन तो अंतःकरण में भगवानाकार, कृष्णाकार, ब्रह्माकार वृत्ति तो बनी है, द्वेष से ही कर ले लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति बनी है, पहुंच तो वहीं जाएगा। अरे कोई नाच के जाए, कोई कूद के जाए, कोई पैदल जाए, लेकिन पहुंचेगा कहां, वहीं पहुंच जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरे से द्वेष भी कोई करेगा, अकल मैंने बताया था शिशुपाल का कितना द्वेष था भगवान से, लेकिन भगवान ने शिशुपाल का क्या किया, विवाह करा के भला किया कि नहीं किया, न करा के भला किया। एक आओ किस लिए बताए, भगवान का अनुग्रह है, आगे आएगा फिर संशय में बताऊंगा। एक श्लोक है, देश त्यागो महाव्याधि विरोधो बंध विष धन हानि अपमानश्च पंच एता देवा अनुग्रह। आप अपने घर में रहते हो, शांति से रह रहे हो, तो भगवान की आपके ऊपर क्या है, अनुग्रह है, कृपा है। और आपके जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपके घर वालों ने आपको धक्के मार के क्या किया, बाहर निकाल दिया, कोई नहीं पूछा, तो चिंता नहीं, भगवान का अति अनुग्रह है, क्या है, अति कृपा है। क्योंकि भगवान ने आपके उस अभिमान को तोड़ना चाहते हैं, वहां रहकर के आपका अभिमान बढ़ता जाएगा, देश में रहकर के उस परिस्थिति में रहकर के आप उसी का चिंतन करोगे, जगत की वास्तविकता का ज्ञान नहीं होगा, और वहां रहकर के पुनरप जन्म पुनरप मरण के ही चक्रव्यूह में फंसे रहोगे, तो भगवान वहां से निकाल करके आपको, आपके ऊपर कृपा कर लेते हैं। तो देश त्यागो, ये कृपा की नहीं कृपा है, अन्य समझ में आ रहा हो तो भौतिक उदाहरण से देख लेना, जब पाकिस्तान भारत का क्या हुआ, बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान से जो लोग यहां आए तो उसमें कितना कोसे होंगे भगवान को बताओ, सब लूट गया, कपड़े भी नहीं बचे, हमने कौन सा पाप किया था जिस पाप की सजा भगवान ने मुझे दिया, किस समय 1947 में, बोले उन्हें नहीं बोले होंगे बताओ, होगा कोई तो पूछ लेना, वो यही गाली दे रहा होगा उसमें भी। लेकिन अब 47 साल बाद, 60 साल के बाद जहां वो पहुंचा है, अब सोचता होगा बहुत बढ़िया किया, यदि न आया होता न वहां से, तो आज तो मैं जो हूं कुछ भी नहीं बचता, बल्कि हो सकता अपने धर्म कुल सबको खो करके दूसरे धर्म में मैं जाना पड़ता। तो भगवान ने उस समय आपको वहां से निकलवाया, ऐसी परिस्थिति खड़ा किया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो रहे हैं हम भाई देखो सहारनपुर में, पंजाब में जाते हैं, वहां बहुत पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, पंजाबी परिवार, वो सब बताते हैं महाराज जी लाशों की ढेर पे आए, मांग मांग के रोटी खाए, बड़ा दुखी होते थे, लेकिन कष्ट सहा, आज वहां के सबसे रईसों में उनकी गिनती हो रही है। यदि वहां रहते तो बन पाते क्या। तो देश त्यागो महाव्याधि, आपका शरीर स्वस्थ है, भगवान की क्या है, कृपा है। अब महाव्याधि, शरीर में बगे बगे रोग आ गए, चिंता मत करना, भगवान का अति अनुग्रह है, कृपा है। यदि शरीर में रोग न आवे ने, तो कभी भोगों से आपको विरक्ति हो ही नहीं सकती, पक्का जान लेना। जब शरीर में रोग आते हैं ना, तभी आपको संसार के विषय भोग क्या लगते हैं, तुच्छ लगते हैं,
क्षणभंगुर लगते हैं, वहां से आप हटने का प्रयास करते हो, तो ये भी हटाने के लिए भगवान आपके ऊपर क्या करते हैं, कृपा करते हैं। विरोधो बंधुवी सह, आपके परिवार वाले आपका बड़ा सम्मान करते हैं, तो भगवान की आपके ऊपर क्या है, कृपा है। अब कोई आपकी सुनता ही नहीं, अपनी झपली अपना राग अपलापते हैं, तो दुखी मत होना, भगवान की आपके ऊपर विशेष क्या है, अनुग्रह है। मैंने देखा, मैंने एक गिलास पानी इनसे मांगा, इन्होंने बोल दिया महाराज अपने आप नहीं ले सकते क्या। सही बात, दुख तो लगा उस समय, लेकिन मांगने की वृत्ति जीवन भर के लिए समाप्त हो गई। तो फायदा है कि नुकसान है बताओ। यदि मांग के पालन कर दिए होते तो मेरी आदत क्या हो जाती, खराब हो जाती। और जो आता, एक गिलास पानी देना, एक डिब्बा वहां रख देना, ये वहां कर देना, एक व्यक्ति ने मुझे अपना काम अपने आप करना सिखा दिया, तो व्यक्ति अच्छा था बुरा था, उसके रूप में भगवान ने कृपा किया। सच बता रहा हूं मैं आपको, बताऊं एक बार ऐसी घटना हुई है। हम लोग सारे, एक बार हमसे किसी ने पूछा महाराज आश्रम बनाओ, मैं 50,000 दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। हमने कहा मन में खुराफात आ जाती है, बताया ना कहीं से आशा मिले। तो एक बार संकल्प लिया, एक माता से कहा मैया आपने कहा था, उसने कहा अरे मैंने तो कहा था, मेरे आप मांग रहे हैं, जमीन खिसक गई मेरी, तब से मांगने की आदत ही एकदम समाप्त हो गई, मांगने बंद कर दिया। कभी किसी से मांग ही नहीं सकता, भूखे रह जाता हूं, लेकिन मांग नहीं पाऊंगा। तो कहने का भाव, उस माता ने अच्छा किया बुरा किया, उस माता के रूप में भगवान हमारे ऊपर क्या किए हैं, कृपा किए कि भिखारी पना समाप्त कर दिए। नहीं तो यदि माता ने दे दिया होता तो नंबर एक का क्या बन जाता, भिखारी बना देता। तो देश त्यागो महाव्याधि विरोधो बंधुवी सह, आप लोग चिंता मत करना, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती है, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता है, मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता है, भगवान की आपके ऊपर क्या है, विशेष कृपा है। और है भी मीराबाई, आप ध्यान देना, मीराबाई यदि मीराबाई के पति के मरने के बाद मीराबाई के परिवार वालों ने मीराबाई को पूरा प्यार दिया होता तो क्या मीराबाई बन पाती क्या। ध्यान देना, नरसिंह मेहता को उनके भाई और भावज ने पूरा स्नेह पुत्र वाला दिया होता तो क्या नरसिंह मेहता भगवान के दर्शन कर पाते क्या। तो ये परिवार का जो विध्वंस है ना, इसी विध्वंस ने ही परिवार की आसक्ति को हटाया और उस परमात्मा से प्रेम बढ़ाया। तो चिंता मत करना, हमारे घर वाले मेरी बात सुनते, मेरे बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, चिंता न करना है। भगवान की आपके ऊपर क्या बरस रही है, बारिश की तूफान आ रहा है, चिंता न करना है। फिर भी चिंता है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, काहे को नहीं मानता, कृपा बरस रही है। चलो, देश त्यागो महाव्याधि विरोधो बंधु भी स, धन हानि ये भी मैं मानता हूं, धन है भगवान की आपके ऊपर क्या है, कृपा है। लेकिन धन नहीं है तो चिंता मत करना, अति कृपा है, क्योंकि धन आएगा तो आपको अशांत कर लेगा पक्का। हम ही सोचते हमारे पास अभी करोड़ों रुपए आ जाए ना, तो मैं सोचूंगा कहां जमा करूं, कौन सा शेयर खरीदूं, इस करोड़ को 2 करोड़ कैसे बनाऊं, सही तो चिंता लग जाएगी, कैसे टैक्स ज्यादा से ज्यादा बचाऊं। अधन नहीं है तो कोई चिंता है ही नहीं। तो धन आएगा तो होटल में खाना शुरू कर दोगे ज्यादा, तो पेट भोग होगा, भोग में रोग होगा। अथवा धन आएगा तो अभिमान आएगा, तो परमात्मा, हम नहीं धन को बुरा नहीं मानते, ध्यान देना, परमात्मा जो जिसको संभालने की कला आती है परमात्मा उसको देता है। वो जानता है पर मेरे पास धन ज्यादा आ जाएगा मैं पागल हो जाऊंगा, इसलिए परमात्मा मुझे दिए नहीं। और जो संभालने की कला आता है परमात्मा ने उसको दिया है, तो हमारे ऊपर भी भगवान की क्या है, विशेष कृपा है। धन हानि अपमानश्च, यदि आपका सम्मान मिलता है चारों तरफ, वो क्या बोलते हैं टीवी के पत्रकार लोग ने 25 माइक लिए खड़े हैं, तो भगवान की आपके ऊपर क्या है, कृपा है। लेकिन मैं तो कहता हूं आपका अपमान है सम्मान नहीं है, तो भगवान की आपके ऊपर क्या है, अति अनुग्रह है। सदा ये चिंतन करते वक्त, मैं तो सही बता, मैं तो कुछ भी बोल देता हूं, आप लोग कोई बवाल नहीं है। अभी कोई बहुत बड़ा आदमी कुछ बोल देवे तो
अरे लेने देने पड़ जाएंगे, एक शब्द कुछ का कुछ निकल गया तो देख लो कितनी माफियां मांगनी पड़ती हैं संसद में आकर के। तुम माफी मांगोगे, ये क्यों बोल दिया, ये कहेगा अपने राम तो बढ़िया है, कहीं भी आओ अकेले घूमने के लिए चला जाता हूं, अकेले आ जाता हूं, कोई चिंता नहीं है। और जिसके पीछे दस दस लोग जा रहे हैं बताओ, उसको शांति से नींद भी आती है, बताओ शांति से क्या लघु शंका और दीर्घ शंका भी नहीं कर सकता वो आदमी, तो वहां भी जज बना हुआ है। तो बताओ आपका सम्मान आपके चाहने वाले लोग नहीं है, अच्छा है बुरा है आप बताओ। मस्ती से कहीं भी कहीं गायब हो सकते हो, आपको कोई चिंता नहीं है। और दस चाहने वाले होंगे तो आपका जीना हराम कर देंगे। तो अपमानस, यदि अपमान मिलता है तो दुखी मत होना, ये भी भगवान की क्या है, अति कृपा है। तो बताओ आप सब के ऊपर भगवान की अति कृपा बरस रही नहीं बरस रही है, तो फिर काहे को चिंता है। हम तो कहते हैं जब परमात्मा ही कृपा कर रहा है तो फिर किस लिए चिंता करनी है। बस एक ध्यान देना, जीवन में जो भी घटना घटित होती है, जो भगवान का भक्त होता है उसमें कृपा का अनुसंधान करता है, और जो भगवान का भक्त नहीं होता ना वह शिकायत करता है। अब आप शिकायत करने वाले हैं अथवा कृपा का अनुसंधान करने वाले में हैं, अब अपने आप निश्चय कर लेना किसमें है। कृपा का अनुसंधान करो, उसमें भी कहीं न कहीं कोई न कोई क्या होगा, भलाई छिपी हुई है। तो परमात्मा से द्वेष करने वाले भी व्यक्ति का यदि परमात्मा भलाई करते हैं तो हम तो कहते हैं प्रेमपुरी वाला व्यक्ति परमात्मा से द्वेष तो कर ही नहीं सकता है, वह तो क्या करता है परमात्मा से प्रेम ही करता है, तो परमात्मा उसका भला उसके ऊपर अनुग्रह कैसे नहीं करेंगे। तो हम सबके ऊपर उस परमात्मा का बहुत बड़ा अनुग्रह है। एक प्रश्न और आ गया, संशय है, ननु आत्मनः सकाशाद उत्पन्ना जीव संततिश्च इयम् जगतः प्रियतर आत्मा तत्प्रकृते नैव संभवती। मैंने महाराज जी सुना है कि आत्मा से ही सारे जीव की उत्पत्ति होती है, आपने सुना नहीं सुना है, कहां सुना है, तैत्रेयी स्तुति में, तस्माद वा एतस्मात आकाश संभूतः, आकाशाद वायुर, वायुर अग्ने अग्ने आप आप औषधि है, ये सब है ना, औषधि माने पृथ्वी, अब फिर इन्हीं से ही सारा संसार पैदा हो गया। तो सबकी उत्पत्ति का कारण कौन है, बोलो भाई, परमात्मा से सब पैदा हुआ। और परमात्मा प्रिय से प्रिय है, कौन है, प्रियतर आत्मा, जगत में यदि प्रिय से प्रिय है तो कौन है, परमात्मा अपनी आत्मा है, पत्नी से प्रेम नहीं है, पुत्र से प्रेम नहीं है, अपनी आत्मा से ही सबसे ज्यादा प्रेम है, ये स्तुति का वाक्य है। लेकिन यह कृष्ण में तो दिखाई नहीं देती, कृष्ण तो खुद पैदा हुए हैं, वो दूसरे से क्या पैदा करेंगे, कृष्ण तो खुद ही क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं किसी से, और कृष्ण सबके प्रिय भी नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि कृष्ण आत्मा ही है। संशय आ रहा है समझ में, कृष्ण आत्मा ही है, आप यह कैसे कह सकते हो, वह तो खुद ही क्या है, अब कृष्ण माने नहीं आप भी, कृष्ण की जगह आप क्या कर देना, आप तो खुद पैदा हुए हो, आपसे यह सारा संसार पैदा हुआ है, आप कैसे कह सकते हो, आप सबके प्रियतम हो ये भी आप कैसे कह सकते हो। कई लोग तो हमसे घृणा भी करने वाले होते हैं। तो इस संशय का समाधान है, वत्स आहरण अवसरे पृथक वयोरूप वासना भूषान हरि अजम मोहम कर तुम सवत्स गोपान विनिर्म में स्वस्मात। एक बार भगवान कृष्ण गाय चरा रहे थे, मालूम नहीं कथा क्या कर रहे थे, गाय चरा रहे थे, तो गाय चर रही थी इस समय, एक मंडली बना करके भगवान भोजन कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी भगवान की लीला देखने, असली वाले हैं कि नकली वाले हैं, देखने के लिए आए तो भगवान ही चाट रहे थे कढ़ी चावल, कहां से, यहां से चाट रहे थे, जैसे साउथ इंडियन लोग यहां से खींचते हैं, हाँ, ऐसे खींच रहे थे, तो कहा ये कोई भगवान के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ब्रह्मा जी चुपचाप चले गए और गायों को छिपा दिया, क्या किया, गायों को छिपा दिया। अब फिर इधर भगवान कृष्ण सोचे गाय नहीं दिखाई दे रही, क्या करें, गए गायों को देखने के लिए। तो ब्रह्मा जी इधर आए और सारे गोप बालकों को छिपा दिए। भगवान जब गाय को देख के वापस आए तो उनको न गाय मिली न गोप बालक मिले। भगवान ने सोचा आखिर हो क्या गया, सब कहां गायब हो गए। तो थोड़ा आंख बंद करके भगाए, भगवान तो अंतर्यामी है, जान गए ये सारी लीला किसकी है, ब्रह्मा जी की लीला है। तो कहा अच्छा भी मैं मजा चखाता हूं। तो उन्होंने क्या किया कि जितने बछड़े थे, जितने न दूध देने वाली ऐसी गायें थी, क्योंकि दूध देने वाली गायों को नहीं भेजते चराने के लिए, दूध देने वाली गाय को कहां बांध देते हैं, घर में खूंटे में रख देते हैं। जो दूध देने वाली गाय नहीं थी, बछड़े होते थे, उनको चराने के लिए बच्चों को भेज दिया करते थे। सब के रूपों में कौन बन गए, भगवान खुद बने नहीं बने, कहते वत्स आहरण अवसरे, बछड़ों को चुरा लेने के समय में कहते अजम मोहिम कर तुम, ब्रह्मा को मोहित करने के लिए भगवान ही जितनी उम्र की जो गाय थी, जितने उम्र का जो ग्वाल बाला था, जिसने जैसा कपड़ा पहना था, जिसके पास जैसी डंडी थी, जिसके पास जैसा कपड़ा था, सबके रूपों में कौन बन गया, भगवान ही अपने आप को उस रूप में क्या कर लिए, परिणत कर लिए। भगवान ही अपने आप को उन सबके रूपों में क्या कर लिया, परिणत कर लिया, नहीं कर लिया। तो आप कैसे कर, भगवान की यह लीला यही दिखा दे रही है, कौन सी लीला, गाय बछड़ों के रूप में बनने। तो गाय बछड़े भगवान नहीं बने हैं, ध्यान देना, हम बस वही लीला समझ जाते हैं, इसके आगे हम नहीं समझ पाते। उस गोपनीय रूप से ये समझा रहे हैं कि परमात्मा ही अपने आप को इस जगत के रूप में परिणत कर लिए हैं। क्या किए हैं, परमात्मा ही अपने आप को द्वापर वाली गाय बछड़े के रूप में नहीं, बल्कि किसके रूप में, इस सारे विश्व के रूप में ही परमात्मा ही अपने आप को क्या कर लिए हैं, परिणत कर लिए हैं। सारा संसार उस परमात्मा से अब भी अलग है ही नहीं, उसी से ही पैदा हुआ है। वो तो लीला वहां दिखाया गया है इससे दिखाने के लिए कि सारा संसार के रूप में भगवान ही परिणत हो गए हैं। जैसे थोड़ा सा एक दो उदाहरण लेना, आप हमने तो कम देखा है, आपने देखा होगा ज्यादा, जब पानी जमता है बर्फ में तो एक साथ ही जमता है, थोड़ी थोड़ी गुल्थियां बन जाती हैं, हाँ? क्या गुल्थियां बनती होंगी थोड़ी थोड़ी, नहीं पता नहीं, दही तो जमाया होगा, दही जब जमाते हो तो दही जब जमने वाली होती है तो थोड़ी थोड़ी क्या बनती है, बीच बीच में गुल्थियां बन जाती हैं, गांठें सी बन जाती हैं, और लंबे समय के बाद फिर पूरी दही क्या हो जाती है, एक हो जाती है। जैसे यह पूरा चैतन्यमय ब्रह्म है, हमारी उस चैतन्य ब्रह्म में वासनाओं के कारण छोटी छोटी सी गुल्थियां पड़ गई हैं, एक गांठ मैं भी हूं, एक गांठ आप हो, एक गांठ सब बने हुए क्या है। लेकिन जैसे ही बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, हल्के जमे हुए टुकड़े देखा होगा, बर्फ जब जमती है छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं पूरे तालाब में, पूरा अभी तालाब सॉलिड ठोस नहीं जमा हुआ है, जमने वाला है, क्या बन गया है, छोटे छोटे गुल्थियां ने गांठ है, गुल्थी क्या बोलते हैं, गांठ सी बन जाती नहीं, ढोंग पीसेस थोड़े थोड़े बन जाते हैं। उसी प्रकार से उस अखंड चैतन्य ब्रह्म में हम सबकी वासनाओं के कारण ये छोटे छोटे क्या बन गए हैं, गांठ पड़ गए हैं। तो वह दूध ही मतलब इस दही अथवा गांठ के रूप में क्या हो गया है, परिणत हो गया, वह जल ही इन छोटे छोटे बर्फ के रूपों में परिणत हो गया है। सारा संसार ही किसके रूप में परिणत हो गया है, इस ब्रह्म के रूप में ही परिणत हो रहा, इस ब्रह्म से पृथक संसार की सत्ता है ही नहीं, बल्कि संसार, अब क्या बोलूं, संसार ही ब्रह्म रूप है, एक अवस्था में संसार ही क्या है, ब्रह्म रूप ही है बस। लेकिन अब गांठों के कारण हम अपनी ब्रह्म रूपता तो समझे, इन दूसरे की ब्रह्म रूपता नहीं समझे, जबकि मैंने यही बताया कि आधा ज्ञान नहीं होना है, किसी को तो हम ब्रह्म रूप में जान जाते हैं लेकिन दुनिया ब्रह्म रूप नहीं है, और किसी को दुनिया ब्रह्म रूप दिखती है लेकिन अपने को ब्रह्म रूप नहीं देखता है। पूर्ण ज्ञान क्या है, कि हम भी और तुम भी सब के सब क्या है, ब्रह्म ही रूप है, ऐसा बोध हो जाए तो सब उसी से तो पैदा हुए हैं। आजकल तो इस इलेक्ट्रॉनिक युग में फिल्म देख लेना, फिल्म में लड़का लड़की नदी तालाब आग तूफान बारिश जो भी दिख रही है सब प्रकाश की किरण है या प्रकाश की किरण से अलग कोई सत्ता है? जब जड़ प्रकाश में भी इतनी क्षमता हो सकती है कि अनेक रूपों में परिणत हो जाए, पूरा संसार दिखता नहीं दिखता फिल्म इंडस्ट्रीज में उसमें पर्दे पे, तो उस चैतन्य प्रकाश इतने रूपों में परिणत हो जाए इसमें कोई आश्चर्य की बात है? और नहीं तो 3D फिल्म में देखा ही होगा, देखा ना 3D में, तो ये वाली फिल्म तो पर्दे पे दिखती है और 3D वाली कहां दिखती है बोलो भाई? एकदम सामने रसगुल्ले की थाली कहां जाती है? आपके अंदर नहीं, सामने यूं हाथ लगा के देखते हो, देखा नहीं है लग रहा है इसे अंदर कह रही हो। रसगुल्ले की थाली कहां आती है? एकदम सामने आती है थाली, अंदर नहीं आती भाई, कभी नहीं देखा है ना इसलिए जा उसको खाना इसलिए अंदर कर रही है। तो बाहर एकदम हाथ लगाओ लेकिन वहां कुछ मिलता? ऐसे सारे संसार में वो 3D फिल्म की तरह हो गया है, है प्रकाश ही लेकिन अपने से क्या दिखता है, अलग दिखता है। अरे भाई स्वप्न में स्वप्न का जितना संसार दिखता है किसके भीतर है? अपने ही भीतर है, लेकिन अपने ही भीतर का संसार कहां दिख रहा है? अपने से बाहर दिख रहा है। वही विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर कहते हैं, आपके भीतर का ही संसार आपके बाहर दिख रहा है, आप ही भोक्ता के रूप में, आप ही भोग्य के रूप में, आप भोग के साधन के रूप में कौन परिणत हो गया है? आप स्वयं परिणत हो गए। स्वप्न में जो भोगता है वह कौन बना है? भोगने वाला कौन बना? मैं ही बना हूं। और जो भोगने वाली वस्तु है वह कौन बना है? मैं ही बना हूं। अब भोग का जो साधन है वह भी मैं बना हूं। तो स्वप्न में एक ही सृष्टि में तीनों है, नहीं तीनों है? ऐसे इस विश्व में भी एक से ही क्या पैदा हुआ है, यह सारा संसार पैदा हो गया है। भगवान ने वहां वो लीला करके दिखा दिया अपनी ब्रह्मरूपता। तो आप भी ये लीला रोज करते हो कहां? स्वप्न में। तो अपनी ब्रह्मरूपता को भी आप भी जान जाओ। कैसे? कई उदाहरण दिया। अग्नेर यथा स्फुलिंगा, स्तुति के वाक्य हैं। अग्नि से जैसे स्फुलिंग पैदा होते हैं, छोटे छोटे चिंगारियां पैदा होती हैं, लेकिन फिर भी अग्नि से जो चिंगारी पैदा होती है उस अग्नि से क्या दिखती है? अलग दिखती है, अलग दिखती है। तो वहीं स्तुति में दूसरा उदाहरण दिया, यथा उरंगनाभि सिजते गृहते, जैसे मकड़ी के जाले से क्या दिखता है? मकड़ी से जाला उत्पन्न होता है, बाद में उसी में समा जाता है, लेकिन फिर भी मकड़ी उससे अलग दिखती है। तो एक तीसरा उदाहरण बताया, पृथ्व्याम औषध है, जिसे पृथ्वी से तमाम वृक्ष पैदा होते हैं, लेकिन वृक्ष पैदा हुआ भी पृथ्वी से वृक्ष अलग नहीं है, वृक्ष के रूप में ही कौन है? पृथ्वी है। ऐसे सारे संसार के रूप में कौन है? ब्रह्म ही है। ऐसा स्तुति के अर्थ को दिखाने के लिए ही भगवान ने अपने उस शरीर का विस्तार करके जीव रूप में प्रकट हो गए हैं। अब भगवान प्रियतम है, क्या है? इस पे चर्चा हम लोग कब करेंगे? कल करेंगे। भगवान प्रिय से प्रियतम कैसे हैं? हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।